आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और मैं आपके साथ आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक को डिस्कस करती हूँ। आज हम आपके साथ इस ऑडियो में चैप्टर नंबर 1 का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी चेंज ऑफ प्रेशर से क्या इफेक्ट्स आते हैं किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर, हमें उसको जानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पेज नंबर 8 से। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो डिफरेंस है अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो उन सभी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उसके आधार पर है। जैसे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है किसी भी मैटर के अंदर, जैसे वाटर है उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है किससे, सॉलिड से, और गैस में वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इसके बिहाफ पर हमने ये जाना कि कैसे डिफरेंस है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। क्या होगा अगर हम किसी तरीके से एक गैस को प्रेशर देने लगे और उसको कंप्रेस करने लगे जो कि एक सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि अगर इस तरीके से किया जाए, कंप्रेस किया जाए और उसको प्रेशर दिया जाए, तो क्या वो पार्टिकल्स क्लोजर हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आप अगर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें प्रेशर को, तो जो मैटर है उसके स्टेट में कोई चेंज आएगा? तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब आप फिगर 1.8 को रेफर कीजिए। देखिए उस फिगर को, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर। ये फिगर दिया है आपको, एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर एक कॉर्क टाइप लगी हुई है जिससे कि वो नीचे वाले पार्टिकल्स को प्रेशर लगा सके और ऊपर ना निकलने दे। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई किया गया है सेकंड सिलेंडर पर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा पास आ गए हैं एज कंपेयर टू नंबर 1। देन नंबर 3 वाले में आप देखिए कि जो पिस्टन है वो और नीचे कर दिया गया, यानी कि और ज्यादा प्रेशर को अप्लाई किया गया है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा क्लोज हो गए हैं। सो अब आप देखिए कि डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या आएंगी। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम गैसेस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, तो गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे किचन के अंदर LPG सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसके अंदर कंप्रेस किया गया है। और जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे या उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो वो उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है, अभी स्टेट ऑफ मैटर है उसका गैस, तो वो गैस वाले स्टेट ऑफ मैटर से लिक्विड वाले स्टेट ऑफ मैटर की तरफ आ जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इज इट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर? यह आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपने सॉलिड CO2 के बारे में जाना है? क्या आपने कभी सुना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ होता है? अभी तक हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वो गैसियस स्टेट में ही रहती है, पर क्या कभी आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? इसको स्टोर किया जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, काफी ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। देखिए, हमने प्रेशर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को भी बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ चल देगा। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. सॉलिड CO2 को हम डायरेक्टली गैशियस स्टेट से कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसका जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर दें 1 atmosphere से विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, और ये लिक्विड स्टेट में भी नहीं आता है. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लीज अंडरलाइन, ड्राई आइस क्या होता है. ड्राई आइस कुछ नहीं है, ड्राई आइस ये है कि CO2 को अंडर हाई प्रेशर उसको सॉलिड स्टेट में स्टोर किया जाता है, और उसको जब आप डिक्रीज करेंगे प्रेशर को 1 atmosphere से तो वो डायरेक्टली आ जाती है किस में, गैशियस स्टेट में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. इसी कारण CO2 को ड्राई आइस का नाम भी दिया गया है. दस We can say that pressure and temperature determine the state of a substance. तो हम ये कह सकते हैं कि pressure और temperature किसी substance का state determine करते हैं, whether it will be solid, liquid or gas. तो हम ये यहाँ पर conclude करते हैं कि pressure और temperature किसी भी substance का state of matter decide करते हैं, चाहे वो solid हो, चाहे वो liquid हो और चाहे वो गैस हो. सो नाउ कमिंग टू फिगर 1.9 फिगर को आप देखेंगे, वहां लिखा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states ऑफ मैटर. 3 state ऑफ मैटर्स होती हैं, उसे आप याद रखिए, लिक्विड, सॉलिड, गैस. इन तीनों का इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है. देखिए, पहले सॉलिड टू गैस को देखिए. सॉलिड से गैस के लिए आप जो प्रोसीजर यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं, उसको सब्लिमेशन कहा गया है, और सब्लिमेशन के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं. देन गैस टू सॉलिड, हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाय सब्लिमेशन, अगेन बाय सब्लिमेशन. नाउ गैस टू लिक्विड, फॉर गैस टू लिक्विड वी यूज द प्रोसीजर कॉल्ड एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन से हम गैस से लिक्विड में जाते हैं. देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस वी यूज वेपराइजेशन, वी यूज द प्रोसेस कॉल्ड वेपराइजेशन. देन लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन. एंड देन सॉलिड टू लिक्विड वी यूज द प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन. वी हैव लर्न्ड ऑल दीज प्रोसेसेस इन द प्रीवियस ऑडियोज, हम इन सारे प्रोसेसेस को पिछली ऑडियोज में पढ़ चुके हैं. Now, you have to learn these processes as it is. Now, coming to the questions given on page number 9. Page number 9 पर आपको index questions दिए हैं. अब हम उन questions को attempt करेंगे. So, question number 1. Convert the following temperature to Celsius scale. A. 300 Kelvin. B. 573 Kelvin. So, आपको इन गिवन टेम्परेचर्स को, जो कि आपको दिए गए हैं केल्विन में, कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल. सो फॉर कन्वर्टिंग द टेम्परेचर स्केल फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर ऑफ केल्विन. जैसे आपको यहाँ पर 300 केल्विन दिया है, तो आप 300 केल्विन के अंदर से 273 को माइनस कर देंगे, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ 300 आपको दिया है, 300 में से आप माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 273 को, आपको मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही आप 573 केल्विन के लिए करेंगे, माइनस करेंगे 273, तो आपको मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. What is the physical state of water at? Water की physical state क्या होगी अगर temperature है 250 degree Celsius और B 100 degree Celsius. So, we all know that water at 100 degree Celsius starts to vaporize. 100 degree Celsius पर पानी vaporize होना start हो जाता है. which is called as the boiling point of water. So, 4.A, water yahan par gaseous state mein exist karega. Water at 250 degrees Celsius exists in gaseous state. Point B, 100 degrees Celsius. So, we all know this. At 100 degrees Celsius, water starts to boil or water starts to vaporize. Matlab vapors banne start hote hain. To iska matlab us samay water liquid aur gaseous dono state mein exist karta hai. At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water starts changing from liquid state to gaseous state. Yani 100 degrees Celsius par water. So, yahan 100 degree Celsius pe wo liquid state se gaseous state ki taraf aata hai. Isliye dono forms mein wo exist karega. Liquid mein bhi aur gaseous mein. Now, question number 3. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? Kisi bhi substance ke liye temperature constant kyun rehta hai during the change of state? So, आप नोट डाउन कर लीजिए आंसर को दैट ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट जब भी कोई चेंज होगा स्टेट का द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट यानी वो एक सा क्यों रहता है समान क्यों रहता है दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट in increasing the temperature of the substance. Ek baar main fir se bolti hu, during a change of state, the temperature remains constant. This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. Therefore, this heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. So, यहाँ पर आपको explanation लिखवाया गया है, बताया गया है मेरे द्वारा कि जो heat supply की जाती है temperature increase करने के लिए वो utilize हो जाती है किसके द्वारा change of state के द्वारा यानी जो state अभी present है उसमें जो हमने heat apply करी है वो utilize हो जाएगी किस किस वजह से कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ओवरकम कर देती है देयरफॉर वो उसको ओवरकम कर देता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे ओवरकम कर देता है जिसके कारण हीट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती उस समय उस सब्सटेंस के स्टेट को उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाती है ठीक है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेयरिक गैसेस एटमोस्फेयरिक गैसेस को आप लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमोस्फेयरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड अभी हमने पढ़ा भी यहां पर कि हम जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो एटमोस्फेयरिक गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज 1.5 इवेपोरेशन इवेपोरेशन के बारे में अब हमको पढ़ना है Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? So, here a question has been asked to you ki aapko hamesha zarurat padti hai हीट करने की जब भी आप प्रेशर को चेंज करना चाहते हैं फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर तो उसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि अपनी एवरीडे लाइफ से जहां पर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर बिना बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस किए या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के हो गया हो यानी आपने अपनी एवरीडे लाइफ में कभी भी कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है जहां पर आपने किसी भी मैटर को जिसका स्टेट क्या है लिक्विड है वो वेपर स्टेट में पहुंच जाए विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट वाटर द when left uncovered slowly changes into vapor. पानी को जब left मतलब छोड़ दिया जाता है uncovered तो वो धीरे धीरे vapor form में change होने लगता है. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? So पहला example दिया गया है कि जब पानी को आप बिना ढका छोड़ देते हैं लेकिन हम उसे heat provide कर रहे हैं, वो gas पे रखा हुआ है जैसे आपके stove पे रखा है, तो वो slowly slowly vapor form में change होने लगता है and after a certain time period वो पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में चला जाता है, वेपराइज हो जाता है, पानी नहीं बचता है. वेट क्लोथ्स ड्राई अप, और जो गीले कपड़े हैं अगर आप उन्हें सनलाइट में सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं. व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स, इन दोनों ही एग्जांपल्स में पानी के साथ क्या हुआ ये आपको सोचना है. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. हम ये पहले भी जान चुके हैं कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पर नहीं रहते. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो एक गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होता है. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles. So, अगर हम liquid की बात करें तो छोटा सा fraction भी particles का उसके पास ज्यादा kinetic energy होता है और वो उसके अंदर क्षमता होती है कि वो force of attraction को break down कर सके of other particles so that it can be converted into vapor. Yani jo liquid ke andar particles hai unke paas higher kinetic energy hoti hai aur kinetic energy bhi temperature se directly proportional hoti hai. Hum isko pehle bhi pad chuke hain isi chapter mein. To us kinetic energy ki wajah se kya hota hai ki unke paas ye power hoti hai ki wo force of attraction ko overcome kar sake, जिसकी वजह से पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सो ये जो फिनोमेनन है, ये जो पूरा प्रोसेस है चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी किसी लिक्विड का वेपर फॉर्म में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर विच इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से जो नीचे है वो वाला टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में जाने लगेगा तब उसको इवेपोरेशन कहते हैं. सो जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो ये है कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है. ओके, नाउ टॉपिक 1.5.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. सो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. Let us understand this with an activity. हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे. एक्टिविटी 1.14. टेक 5 ml ऑफ वॉटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. आप 5 ml पानी लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसको किसी विंडो के पास रख दीजिए या फिर किसी फैन के नीचे. विंडो ओपन होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप विंडो के पास रखना कंसिडर कर रहे हैं तो विंडो को ओपन रखिए, नहीं तो आप किसी फैन के नीचे उसे रख दीजिए. टेक 5 ml ऑफ वॉटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. अब 5 ml पानी लीजिए, 5 ml लेना है सिर्फ, किसी ओपन चाइना डिश के अंदर और उसको ओपन विंडो या पंखे के नीचे, खुले पंखे के नीचे जो फैन ऑन है उसके नीचे रख दीजिए. टेक 5 ml ऑफ वॉटर इन एन ओपन चाइना डिश and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. अब 5 ml पानी एक फिर से चाइना डिश के अंदर लीजिए, या तो उसे किसी अलमारी के अंदर रख दीजिए, अलमीरा के अंदर रख दीजिए, कबर्ड के अंदर रख दीजिए, या फिर आपके क्लास में अगर कोई शेल्फ है तो आप उस शेल्फ के अंदर उस चाइना डिश को रख दीजिए. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को नोट डाउन कर लीजिए. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. तीनों cases के अंदर evaporation में कितना समय लगा उसको आपको note down करना है. Read रिपीट द अबव थ्री स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. इन तीनों एक्टिविटीज को आपको एक रेनी डे पे भी करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. वॉट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन. अब तीनों चीजों का क्या असर पड़ा इन तीनों, जो हमने अभी पानी रखा है अलग अलग जगह पर, उस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी इवेपोरेशन के ऊपर क्या होगा, वो आपको इस एक्टिविटी के द्वारा इन्फर करना है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. सो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दिया गया है, बाकी एक्टिविटी को आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके अपना रिजल्ट लेंगे, लेकिन आपकी बुक में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं कि क्या हो सकता है. एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो, टेस्ट ट्यूब में जो सरफेस एरिया है वो कम है, चाइना डिश के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अब क्या होगा जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन पे वो कैसे अफेक्ट करेगा. वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन. हम सभी जानते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, वो सतह के ऊपर होने वाला एक प्रोसेस है, ऊपर से होता है. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. जैसे ही हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट. जब हम कपड़े सुखाने जाते हैं घर में, आपने देखा होगा, हम उन कपड़ों को झाड़कर फैलाकर सुखाते हैं, कभी भी उनको मोड़कर नहीं सुखाते, फोल्ड कर नहीं सुखाते. किस वजह से, कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वैसे ही जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वहां पे भी तो इवेपोरेशन हो रहा है वॉटर का, तो वो बढ़ जाता है. एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या अफेक्ट होगा इवेपोरेशन. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू द वेपर स्टेट. जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होगा, वो बढ़ जाएंगे और उन सभी पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी टू गो इन टू वेपर स्टेट, वो वेपर स्टेट में जा पाएंगे. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन टू द वेपर स्टेट. अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने पर क्या होगा. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या है, ये अमाउंट है वॉटर वेपर का जो एयर के अंदर प्रेजेंट है. ये याद करना है आपको, दैट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो ह्यूमिडिटी का क्या अफेक्ट होगा इवेपोरेशन पर जब हम उसे डिक्रीज कर देंगे. द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर. हमारे आसपास की जो हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है किसी गिवन टेम्परेचर पर. इफ द अमाउंट ऑफ वॉटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर जो अमाउंट ऑफ वॉटर है एयर में वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा. समझ रहे हैं आप कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एनवायरमेंट में या एयर के अंदर तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो अपने आप जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा. इस पर क्वेश्चन भी आएगा आगे, हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे. एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब विंड स्पीड को बढ़ाने से, यानी हवा अगर तेजी से चल रही है, जब हमने अभी पंखे के नीचे टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश रखा है या अपनी विंडो के पास रखा है, तो उसके ऊपर विंड स्पीड का क्या असर पड़ता है इवेपोरेशन के ऊपर, उसको जानना है. तो इट इज एन कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. सो ये हमने देखा भी होगा, एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपको बताई जाए, अगर धूप नहीं है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मम्मी क्या करती हैं, कपड़ों को फैन के नीचे सुखाती हैं. उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जब भी हम विंड स्पीड को बढ़ा देंगे तो जो इवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. उसी पॉइंट को यहाँ पर समझना है. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. तो जैसे ही हम विंड स्पीड को बढ़ाते हैं तो जो वाटर वेपर है उसके पार्टिकल्स हैं वो विंड की तरफ भागने लगते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो ये जो वाटर वेपर सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसकी अमाउंट को डिक्रीज करने लगता है। तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इसको आप अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 1.5.2, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है उसको समझिए, ये लास्ट टॉपिक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। जो ओपन वेसल है वहां पर लिक्विड इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास के एनवायरमेंट से, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मींस जब भी इवेपोरेशन होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब कूलिंग होगी तो यहाँ बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो अपनी एनर्जी को वापस एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं आफ्टर इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है सराउंडिंग से, ये क्या करता है कि सराउंडिंग को ठंडा कर देता है। वॉट हैपन्स वेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। क्या होता है अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर, अगर आपके पास एसीटोन नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी एसीटोन होता है, अगर आप उसे अपने पाम पर डालते हैं तो क्या होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो वो जो आपका पाम है, जिस भी सरफेस पे आपने उसको डाला है वहां से वो एनर्जी गेन करेगा और इवेपोरेट कर देगा उसे, कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है, ऐसा सैनिटाइजर के केस में भी होता है बिकॉज उसके अंदर अल्कोहल होती है, तो जब भी आप सैनिटाइजर को हाथ में डालते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेस। किसी गर्म दिन पे क्या करते हैं कुछ लोग, ज्यादातर ये विलेज एरिया में देखने को मिलता है कि वो अपने घरों की छत को या अपने ओपन ग्राउंड पे पानी डाल देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हेल्प करती है उस सरफेस को कूल करने में। इसके बारे में आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछ सकते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं अपने डेली लाइफ में से जहां आपने इस इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू वेपराइजेशन को देखा हो, तो आप सोचिए इसके बारे में। नाउ व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें समर में, गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स को क्यों पहनना चाहिए। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। सो गर्मियों में हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी से परस्पिरेशन होता है। परस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर से स्वेट निकलता है, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो एक नेचुरल फिनोमेनन है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इन टू वेपर। सो हम ये जान चुके हैं कि इवेपोरेशन के टाइम पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। यहाँ सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस से एनर्जी गेन करते हैं और खुद को वेपर स्टेट में चेंज करते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। और ये जो हीट है, हीट एनर्जी है जो कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए के बराबर है, उसके कारण हमारी बॉडी कूल हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन। कॉटन क्या करती है, एक गुड एब्जॉर्बर है पानी की, और वो पानी यानी हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इवेपोरेशन में भी हेल्प कराती है। उतनी ही जल्दी वो कपड़े सूख भी जाते हैं इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? So, ये question और है last जो book में आपको दिया गया है कि क्यों हम water droplets को देखते हैं जिस glass के अंदर बहुत ज्यादा ice cold water रखा है, या glass में नहीं तो हम bottle के अंदर भी देखते हैं कि बाहर water droplets आ जाती हैं। आप इसके लिए करिए, एक टम्बलर लीजिए, उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर डालिए, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या होता है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो उस ग्लास ऑफ वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इस कारण से हम वाटर ड्रॉपलेट्स को देख पाते हैं। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट ऑडियो में आपके पेज नंबर 10 के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।